भक्ति के आगे सब नरक, कहीं सुख नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज अम्बरीश की भक्ति का वर्णन किया है नौवें स्कंध में, वह बताए। और महाराज अम्बरीश चूंकि प्रधान व्यक्ति थे, अतः उनके देश की प्रजा सारे नागरिक भी उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल रहे थे। तो वे सब भगवान कृष्ण के भक्त थे और वे सब पार हुए। पूर्वे अतरन बहुवचन में तिरणा बहु, तर गए, बहुत से लोग तर गए। और एक टीकाकार कहते हैं पूर्वे अतरन ब्रह्मा दय, ब्रह्मा आदि तर गए, भगवान का ध्यान करके, भगवान के चरण कमल का ध्यान करके। तो जहाँ ध्यातारह अपि तीर्णा बहु, जब ध्यान करने वाले पार हो गए, वो भी केवल नख की एक कांति का ध्यान करने वाले पार हो गए, तो मैं साक्षात भगवान को नमस्कार करूँगा, उनको देखूँगा, और इसके बाद और जो मनोरथ करेंगे तो और भी है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है जिस चरण कमल की इतनी महिमा है कि केवल ध्यान करने वाले इस अविद्या सागर को पार कर गए, संसार सागर को पार कर गए। बहुत ही सुंदर चिंतन कर रहे हैं अक्रूर जी, भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, देखूंगा चरण कमल वास्तव में कितना सुंदर है और नख कैसे हैं, कितना चमक रहे हैं। कृतावतार से तात्पर्य है कि वही प्रभु अवतार लिए हैं, आए हैं इस ब्रज में, इतना निकट अपने दिव्य धाम से वैकुंठ से यहाँ आए हुए हैं। कृतावतारस, इसके द्वारा बिल्कुल सिद्ध हुआ कि भगवान जैसे हैं अपने धाम में वैसे ही उतरे हैं। कृत अवतार, अवतार का अर्थ है उतरने, उतराई किए, मतलब उतरे हैं बहुत बड़े धाम से, अप्राकृत धाम से इस प्राकृत जगत में भगवान उतरे हैं, आए हुए, देखने में सुविधा है, और वह अभी हमारे बिल्कुल निकट हैं, ब्रज में उतरे हुए। कृतावतारस दुरत्यम तम पूर्वे तरन जन नखमंडल, तो इसके हमेशा कृतावतार के दो अर्थ होंगे, या तो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जो गोलोक से उतरे हैं, आए हैं, यहाँ लीला कर रहे हैं, अथवा पहले भी जो बारंबार अवतार ले चुके हैं श्री नृसिंह देव के रूप में, वामन देव, भगवान श्री राम, और खास करके भगवान वामन देव के चरण का स्मरण कर रहे हैं, उसे गंगा जी निकली और भगवान का नख बहुत चमक रहा था। भागवत में लिखा गया है कि जब भगवान अपना चरण बढ़ाए, जब बढ़ाए तो पूरे ब्रह्मांड का ऊपर के लोगों का जो तेज था सूर्य आदि का, भगवान के नख ज्योत्सना से सूर्य आदि का तेज फीका हो गया, इतना ज़्यादा तेज था। और ब्रह्मा जी का जो लोक है अपने आप में वो भी चमकता रहता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा लोक बिल्कुल धूमिल हो गया भगवान के चरण ज्योत्सना के आगे, तब भगवान के चरण कमल की अगवानी करने के लिए, रिसेप्शन करने के लिए अपने पुत्रों के साथ और ऋषियों के साथ खड़े पूजा किए भगवान के चरणों। बहुत बड़ा प्रकाश फैलता जा रहा था भगवान का चरण जहाँ जा रहा था, नख से बहुत बड़ा लाइट निकल रहा था। तो जन नखमंडल त्विषा से सब तात्पर्य है कि भगवान वामन देव के नख ज्योत्सना से पहले के कितने भक्त सब तर गए, अविद्या को पार कर गए। और भगवान श्री राम का नखचंद्र भी वैसा ही, भगवान के नख का ध्यान करके ये भगवान के चरण धूलि से कितने लोग पार हो गए। परसि जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अघोर, अहल्या जो गौतम जी की पत्नी थी वास्तव में उसके द्वारा पाप हो गया था, कृत अघोरी, लेकिन भगवान श्री राम के चरण कमल की धूलि से वो तर गई, उसके पाप नष्ट। तरी अहिल्या कृत अघोरी परसि जासु पद पंकज धूरी, पद पंकज शब्द हमेशा आता है चरण कमल की धूलि, उसी चरण कमल को धो करके केवट अपनी नौका पर चढ़ाया था। और खास करके भगवान का चरण, भगवान के चरण का चिंतन ऋषि लोग वह करते हैं, किस तरह भगवान उस कपट कुरंग के पीछे चले थे, जब मारीच के पीछे भगवान चले थे, दौड़ रहे थे, तो उस समय ऋषि लोग उनके चरण कमलों का ध्यान करते, एक कपट पशु के पीछे, कपट मृग के पीछे भगवान दौड़ रहे थे, सब जानते थे दौड़ रहे थे, ऐसा लगता था कि कितनी लालसा है एक मृग को पकड़ने की भगवान। और सीता जी ने देखा था भगवान को दौड़ते, वही अंतिम दृश्य, लंका में जाने से पहले सीता जी ने देखा था अंतिम दृश्य कि भगवान दौड़ते हुए गए मृग के पीछे, तो उसी का चिंतन करती रहती थी हमेशा लंका में जब तक थी, भगवान के चरण कमल का इस तरह चिंतन करती। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमल की सेवा करती, बहुत श्रद्धा से और एकाग्र चित्त से भगवान के चरण कमल का चिंतन करना चाहिए। यह चरण कमल शब्द केवल कोई स्वरूप बताने के लिए नहीं है, वास्तव में चरण का वर्णन है। कभी कभी भ्रम में कुछ लोग हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कहाँ से चरण आया, किसी साधु से पूछा जाता है कहाँ से चरण पधारे। चरण पधारे इसका अर्थ है कि आप कहाँ से आए, चरण माने आप पूरा। बड़े लोगों को चरण से संबोधित किया जाता है, जैसे श्रीधर स्वामी को हम लोग कहते हैं स्वामी पाद, स्वामी चरण, यही कहने का आशय। साधु समाज में तो पूछते हैं कहाँ से आसन आया, तो आसन के विषय में थोड़े प्रश्न किया जा रहा है। आसन माने साधु, वो व्यक्ति पर्सन, वह कहाँ से आसन है मतलब कहाँ से आप आए, लेकिन यह कहना एक धृष्टता होगी कि आप कहाँ से आए, ऐसे नहीं पूछना चाहिए कहाँ से श्री चरण आए, कहाँ से श्री चरण पधारे, अथवा कहाँ से श्री आसन आया जो भी हो इस तरह से बोला जाता। परंतु यहाँ पर वास्तव में भगवान के नख का चरण का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि आगे सर्वांग का वर्णन आएगा, तो यहाँ पर केवल चरण का ही वर्णन किया जा रहा है। लेकिन भगवान के चरण में, भगवान के मस्तक में, बाह में, पीठ में, केश में और भगवान में कोई भेद नहीं है, असल में आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। अतः भगवान का नख कहना उनके सर्वांग को कहने जैसा है, परंतु फिर भी अलग अलग अंगों की अलग अलग छटा है और उसका अलग अलग प्रभाव है। इसलिए अक्रूर जी भावना कर रहे हैं मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा और खास करके ध्यान से देखूंगा उनके चरण कमल की ज्योति को, नखचंद्र की ज्योति को, जिसके प्रकाश में पहले के समस्त बड़े बड़े लोग पार हो गए। ध्यान करके कृतावतार से दुरत्ययम तम पूर्वे तरंजन नखमंडल त्विश, नखमंडल त्विश बहुत सुंदर शब्द है। चेतन चरितामृत में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंगों में चंद्र का समाज है। भगवान चेतन महाप्रभु विलाप करते हुए कहते हैं राधा रानी के भाव में, सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, हे सखी कृष्ण का मुख है चंद्रमाओं में सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा है। द्विज राज मतलब चंद्रमा, द्विज राज राज, तो कृष्ण बपु सिंहासन है, तो कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर मुख विराजता है ये चंद्रमा, और बाकी जितने इसके सभा में बैठने वाले लोग हैं सब चंद्रमा हैं। तो 10 चंद्रमा पैर में बैठे हैं और 10 चंद्रमा हाथ में बैठे हैं, और जो तिलक किए हैं वह भी एक चंद्रमा है, और ये जो 10 नख चंद्र हैं ये जो चंद्रमा है ये कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। तो जो मुख को कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र का मुख है, चंद्रमा का भी सरदार है, तो ये 10 नख चंद्र यहाँ इसकी सेवा करते रहते हैं। फिर बांसुरी पर चलते हैं 10 नख चंद्र हाथ के नख, तो राधा रानी कहते हैं कि ये इस चंद्रमा की सेवा करते रहते हैं, गुण गाते रहते हैं, खूब गुण गाते रहते हैं। बांसुरी बोलती ही हैं तो ऐसा लगता है कि मुख चंद्र की ये लोग स्तुति कर रहे हैं, मागध और बंदी चंद की तरह ये 10 चंद्र नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उधर पैर में जो है वो भी तो नाच ही रहे हैं। तो कृष्ण के अंग में चंद्रमा का समाज है, और एक मुख्य चंद्रमा है और बाकी सब उसके एसोसिएट्स हैं, परिकर। बहुत बड़े पद में इस बात को कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, तो जन नखमंडल त्विशा। अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं भगवान के नख की छटा देखूंगा कैसा चमकता है, कितना सुंदर है इत्यादि। अब उसकी महिमा और अन्य लीलाएं याद कर रहे हैं। जदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः सत्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितम्। जो चरण कमल ब्रह्म भवादि भी सुरैः अर्चितम्, भगवान के का जो चरण कमल ब्रह्मा शिव प्रधान देवताओं द्वारा अर्चित हुआ है, अर्चितम। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं यदि इसको भूतकाल में लिया जाएगा अर्चित हुआ है, वास्तविक अर्थ तो है अर्च मानम इत्यर्थ, जो अर्चित हो रहा है ये अर्थ है। ब्रह्मा और शिव जी देवताओं में प्रधान है और सब देवता इनके पीछे रहते हैं, तो ब्रह्म भवादि भी, ब्रह्मा जी और भव जी ये आदि ही जैसा तय ये प्रधान है, आदि माने प्रधान, ब्रह्मा जी प्रधान। इसका अर्थ है कि समस्त देवता भगवान कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते हैं, केवल इस पृथ्वी पर मनुष्य ऐसे गधे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं वास्तव, बाकी सब देवता भक्त हैं भगवान के। यहाँ तो अलग अलग पंथ अलग अलग विचार सब चला दिए, और किसी किसी के तो ईश्वर निराकार ही है, उनमें नाक है या हाथ है या नाक का प्रश्न ही नहीं, ऐसे खड़ा करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं है ये नहीं नहीं बुद्ध कहेंगे, तो पढ़ो भागवत तब पता चलेगा ना कि भगवान का आकार है या नहीं है, वैसे बोलते रहते। तो इस पृथ्वी पर ही मूर्ख मंडली है वास्तव में, ऊपर के लोक में ऐसा मूर्ख एक भी नहीं है, देवता सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा जी और शिव जी के पीछे चलते हैं, और ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के चरण कमलों के परम अर्चक हैं, परम आराधक हैं। किस तरह से आराधना किया इन दोनों लोगों ने, ब्रह्मा जी भगवान के चरण जल को सदा अपने साथ रखते, कमंडल में रख गंगा जी को, और नीचे जब गंगा जी को धारण करना हुआ तो दूसरा भक्त तैयार हुआ भगवान शिव, जो जटा में धारण किए। कितना आदर है भगवान के चरणोदक के प्रति, बड़े ही गर्व के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव ने धारण किया गंगा जी को, और चरण को धो करके डायरेक्ट ब्रह्मा जी उसे रखे, आज भी रखे हैं वहाँ से धारा, ऐसा नहीं है कि गंगा जी को छोड़ दिया और गंगा जी बस यहाँ आ गई, धारा चलती रहती है, लेकिन गंगा जी का जो ब्रह्मा जी का कमंडल है वो अक्षय है। तो भगवान के ये दोनों भक्त हुए ना, भगवत में एक प्रश्न उठाया गया भगवान कौन है, तो वहाँ उत्तर ये है भगवान वह है जिसके चरण से गंगा जी निकली, सीधा उत्तर गंगा जी निकली हैं, और गंगा जी को ये दो देवता बड़ी ही श्रद्धा के साथ धारण करते हैं, और बाकी देवता तो सब गंगा जी में स्नान करते हैं, जो स्वर्ग में गंगा जी हैं, कई धाराएं हैं गंगा जी भगवान के चरणोदक। तो ब्रह्मा जी और शिव जी प्रधान हैं, भगवान की भक्ति की शिक्षा देते हैं, अतः सारे देवता भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। यदि भूतकाल में इस क्रिया को कहेंगे तो इसका अर्थ ये है कि भगवान वामन देव के चरणों की पूजा किए, भगवान श्री राम के चरणों की पूजा किए, लेकिन ब्रह्मा शिव को भी भगवान कृष्ण के चरण कमल दुर्लभ, उस चरण कमल में मैं प्रणाम करूँगा। जैसे श्री जी को चरण कमल दुर्लभ है कृष्ण का, है ना, वो तप कर रही हैं, वैसे ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कृष्ण का चरण कमल दुर्लभ। यह सुलभ है यहाँ की गऊओं को, यहाँ की भिलनियों को, गोपियों को, गोपों को, सबको सुलभ है, लेकिन देवताओं के लिए दुर्लभ। ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा रहे थे बछड़ा चुराने के बाद, रो रहे थे, बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन भगवान उनसे बात तक नहीं की, भगवान बल्कि आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ये चार सिर वाला जानवर क्या बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी बाद में समझ गए को हमारे रहने से इनको डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के साथ लीला करेंगे, तो प्रणाम करके और परिक्रमा करके भागे, ठीक है ठीक है आप लीला कीजिए हम चलते हैं, पर अर्चना नहीं कर सके भगवान के चरण कमल की, मतलब श्री कृष्ण के साक्षात परब्रह्म अवतारी भगवान का चरण कमल उन्हें दुर्लभ है। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि अर्चितम को भूतकाल में लिया जाएगा तो इसका अर्थ है कि इस समय ये लोग नहीं कर पाते भगवान कृष्ण के चरण कमल, अथवा अर्चितम अर्चमानम इत्यर्थ, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि ब्रह्मा और शिव के द्वारा भगवान के चरण कमल की पूजा होती है, तो पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा और शिव जी का नाम लिया गया, इससे उपलक्षण यह है कि समस्त देवता भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के चरण कमल की अर्चना करते हैं सभी, ये सिद्ध हो गया। अच्छा, श्रिया च देव्या, श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का नाम ही है श्री, क्योंकि वो सौभाग्य की और सौंदर्य की देवी है, श्री का अर्थ है सौभाग्य और श्री का अर्थ ब्यूटी भी होता है सुंदरता, इसकी वो देवी अधिकार भी है, लेकिन देवी उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि देव की हैं इसलिए देवी का, देव मतलब भगवान विष्णु, देव का अर्थ होता है पूज्य या चमकने वाला, सबसे बड़े तेजस्वी भगवान विष्णु हैं और वे पूज्य हैं सबके, इसलिए उनको देव कहते हैं, और देव की पत्नी है इसलिए इनको देवी कहते हैं। ये स्वाभाविक है, देव शब्द का छूछे प्रयोग करेंगे मतलब और किसी का नाम न लेकर के तो उसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण या विष्णु, सीधा अर्थ उसका होता है। जैसे कहते हैं देवोत्थान एकादशी, देवता के उठने की एकादशी, तो देवता मैंने भगवान सीधा अर्थ है। शयनी एकादशी तो मतलब भगवान शयन करते हैं, भगवान जगते हैं तब भी चारों तरफ प्रचार होता है, भगवान सोते हैं तब भी प्रचार होता है। देव मतलब भगवान, और देव की देव संबंधिन्या जो देव की संबंधिनी है पत्नी है उसको देवी कहें, और तृतीया में देव्या श्रिया च देव्या, देव्या श्रिया च जद अर्चितम। श्री जी भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं, जो स्त्रियों में मुकुटमणि है सबसे श्रेष्ठ स्त्री लक्ष्मी जी हैं, सभी विषय में वे भगवान के चरण कमलों की पूजा करती, सदा चरण संवाहन करती रहती हैं, स्त्री जी का स्वभाव आप लोगों ने देखा ही होगा, लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण कमल दबाती रहती हैं, मसाज करती रहती हैं, और समय में चंदन लगाना, भगवान के चरण कमलों में सुगंधित तेल लगाना, और कई तरह से पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। और सबसे बड़ी अर्चना यह है कि अपने हस्त कमल से श्री जी भगवान के चरण कमल का सदा संवाहन करती रहती है, ये स्वभाव। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी यह अर्थ करते हैं कि श्री जी कह करके अक्रूर जी यह भावना कर रहे हैं कि वैकुंठ में जितने भी भगवान के परिकर हैं वे सब भगवान के चरण कमल की पूजा करते हैं। तो स्वर्ग में सारे देवता भगवान के भक्त हैं, और वैकुंठ में जब वैकुंठेश्वरी श्री जी ही भगवान की दासी हैं तो अन्य परिकरों के विषय में क्या कहना है, सभी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये तो वैकुंठ की बात है। और मुनि भी ससात्वत ही, और इस पृथ्वी पर जो मुनि हैं और सात्वत का अर्थ भक्त, ये सब आराधना करते हैं। तो मुनि भी ससात्वत, मुनि लोग भगवान सात्वतों के साथ भक्तों के साथ भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि सात्वतों को गौर करके कहा गया अप्रधान, नहीं, भक्तों के डायरेक्शन में रह करके मुनि लोग भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, यह अर्थ है। क्योंकि बिना भक्तों के साथ हुए वे अर्चना करना जानते ही नहीं, तो मुनि भी ससात्वत ससात्वत ही मुनि भी, भक्तों के साथ होने पर मुनि लोग पूजा करते हैं। मुनि का क्या अर्थ है, मुनि का अर्थ है मननशील, जो परम विचारवान है, जिन्होंने संसार को तुच्छ समझकर छोड़ दिया है, कभी तुच्छ विषय का मनन नहीं करते हैं, बहुत उच्च विषय का मनन करते हैं, भगवान के रूप गुण आदि उनको मुनि कहते हैं। तो ऐसे मुनियों की दृष्टि में भगवान के चरण कमल ही परम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा आनंद। पुरुषार्थ का अर्थ होता है परमानंद, जीवन का सबसे बड़ा लाभ परमानंद मान करके मुनि लोग भगवान के चरण कमलों की पूजा करते। प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधि से धतः निर्गुण यस्था रमनते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, प्राय सारे मुनि भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान के कथा कीर्तन में लगे रहते। प्रायण, प्रायण शब्द का अर्थ प्राय लगभग 95%। कुछ मुनि हैं जो नहीं करते हैं, नाम मुनि हो गया है, सुखदेव जी के कहने का आशय ये है, लेकिन सही सही जो मुनि हैं वे तो रमनते स्म गुणानुकथने हरे, भगवान के गुणानुकथन में ही रमते हैं, भगवान के चरित्र को कहने सुनने में ही रमे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और सात्वत के दो अर्थ हैं, जो सत्य से चिपके रहते हैं और जो सत्वगुण में रहते हैं भक्त, सात्वतों को भक्त कहा गया, भगवान सात्वताम पति भक्ता नाम पालक वहाँ अर्थ किया गया कई बार, और सात्वत वंशी एक जादव विशेष हैं उनको कहा जाता है। तो ये सीमित अर्थ यह नहीं लेंगे कि जादवों के साथ मुनि लोग भजन करते हैं, इस प्रपंच के भीतर माया जगत के भीतर जितने भी भक्त हैं जिनका पहले पुराणों में भी वर्णन हो चुका है, शास्त्रों में वर्णन है, अब तक जो हुए हैं वे सब मुनि साधक सिद्ध सभी भगवान के भक्त हैं। चरण कमलों की आराधना करते हैं। तो स्वर्ग में सब भगवान के भक्त हैं, चरण कमल की आराधना करते हैं, वैकुंठ में सब भक्त तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी पर भी जो विचारवान हैं, जिनके पास बुद्धि है, वे सब श्री कृष्ण के दास हैं। अब जिनके पास विचार ही नहीं है, जो अमुनि हैं, मननशील नहीं हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मननशील हैं तो भक्तों के डायरेक्शन में भगवान की पूजा करते हैं, चरण कमल की पूजा करते हैं। इस तरह चरण की भावना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सभी लोग आराधना कर रहे हैं। जो जिस चरण कमल की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, लक्ष्मी जी करते हैं, मुनि जन करते हैं, भक्त करते हैं, वही चरण कमल गोचारणायाश्चरत बने। कितना कृपा है उन चरण कमलों में कि स्नेह से पशुओं को चराने के लिए वो पशुओं के पीछे चरण घूमते हैं। गोचारणाय, गाय चराने के लिए इधर उधर से घुमा घुमा करके पेट भरने के लिए गाय और वो चरण घूमते रहो। इसका कुछ और अद्भुत अर्थ है, भाव है, जो आगे कहा जाएगा। और जो चरण कमल जब फिर प्रयोग किया गया सर्वशेष में अंत में, जब गोपिका नाम कुछ कुंकुम अंकितम, तो बाकी और सबसे विलक्षण वर्णन किया जा रहा है। और जो चरण कमल श्री गोपियों के वक्षस्थल पर लगे हुए कुमकुम से चिन्हित रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वैसे तो लाल हैं, नीचे का तलवा हमेशा लाल है ही, लेकिन उसमें हमेशा गोपियों के कुछ कुमकुम का दाग लगा रहता है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार अपने वक्षस्थल पर रखी तो कुछ और लालिमा बढ़ गई, दाग लग गया, भगवान धो लिए, तो दिन में कई बार और रोज लगता ही रहता था, इसीलिए हमेशा अंकितम अंकित रहता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि मेहंदी लगाता है अपने हाथ में या पैर में, तो मेहंदी का दाग कई दिन रहता है। तो इस तरह भगवान हमेशा धारण करते थे। गोपियां बड़ी ही ललक से और सेवा की भावना से भगवान के चरण कमल को अपने स्तन पर रखती थी, तो उनके स्तन पर जो कुमकुम लगा होता था, केसर आदि, चंदन आदि, तो वह लग जाता था। तो लगने से कुछ देर तक तो गीला कुछ कुछ लगा रहता था, लेकिन बाद में वो सूख जाता था, फिर भी दाग लाल लाल रह जाता था चरण में, तो अंकितम का। और गोपियाँ भी एक नहीं हैं, भगवान की प्रियाएँ बहुत हैं ब्रज में, और बड़े ही स्नेह से भगवान के चरण कमलों को सुख देने के लिए जो वन में भ्रमण करते रहते थे, तो उसको वे अपने वक्षस्थल पर धारण करते थे। श्री कृष्ण से वन में भेंट होने पर उनको एक थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठा देते थे, और नीचे बैठ करके भगवान के चरण को अपने छाती पर धारण करते थे। तो इससे भगवान का चरण कमल उनके कुमकुम से, उनके वक्षस्थल के कुमकुम से अंकित रहता था। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रश्न उठाया है, क्या ये रसाभास नहीं है? अक्रूर जी दास से भाव के भक्त हैं और श्रृंगार रस का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या ये रसाभास है? चक्रवर्ती पाजी कहते हैं नहीं, रसाभास तब होता है जब व्यक्ति दूसरे से इसका वर्णन करे। यदि स्वयं चिंतन कर रहा है तो ये रसाभास नहीं है। जो तर्क देते हैं कि देखा गया है कि कभी कभी माता पिता भी अपने लड़कों के और अपने पुत्र वधु के श्रृंगार का वर्णन वे आपस में करते हैं, ये देखा गया है, तो इससे उनकी श्रृंगारिक भावना नहीं पनपती है, बच्चों के प्रति स्नेह ही उमड़ता है, अपने पुत्र वधु के प्रति या पुत्र के प्रति वात्सल्य रस ही रहता है वर्णन करके भी। तो अक्रूर जी का जो भाव है भाई, परंतु भगवान के चरण कमल किस तरह से लांछित होते हैं, अंकित होते हैं, जो चरण कमल का चिंतन कर रहे हैं, अतः गोपियों के साथ भगवान की जो लीला हो रही है उसका भी चिंतन करते हैं, खास करके चरण कमल को वक्षस्थल में रखने का। और यह बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। गोपी गीत में चार श्लोक है जिसमें गोपियां भगवान के चरणों के विषय में चिंता कर रही हैं और चरणों की विशेषता बताई। सातवें श्लोक में और 11वें श्लोक में, 13वें में और 19वें में, चार श्लोकों में इतना ज़्यादा वर्णन अन्य किसी बात का नहीं हुआ जितना भगवान के चरण का वर्णन किया। प्रणत देहिना पाप कर सनम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम कृणु कुचे सुनहा क्रिंधि हृच्छयम्। तो भगवान के चरण कमल का वर्णन करती हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे प्रियतम, जो आपके चरण कमलों में प्रणत हुए जीव, जो ब्रजमंडल में, वो सीमित करके कह रही, कई आकर के प्रणत हुए, जैसे कालिए प्रणत हो गया तो उसका पाप दूर किया, या और भी पहले भी, तो जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है ऐसे प्राणियों का पाप दूर कर देते हैं, उसका अपराध दूर कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुग। और इतने स्नेहवान आपके चरण कमल हैं कि घास खाने वाले पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। तृण चर अनुग, तृण चर। अब ब्रह्मा जी जिस चरण की पूजा करते हैं वो चरण एनिमल के पीछे चल रहे हैं, जो कोई विवेक नहीं है, पशु मूड हो, घास काटते हुए आगे आगे चलते हैं, खूंटी कर देते हैं और उस पर भगवान चरण रखते हैं, और उनको कोई ध्यान नहीं रखता रहता है कि ये पीछे से कृष्ण आ रहे हैं, चरण कमल में गड़ेगा घास। तृण चर अनुगम श्री निकेतनम, और सौंदर्य के, शोभा के और सौभाग्य के तो निकेतन है आश्रय, फणि फड़ार पीतम। और ऐसे चरण कमल को आपने फणी के फण पर भी रखा, फणि फड़ार पीतम, फणी का अर्थ फन वाला, फन वाले के फन पर रख, और वही काली जैसे भयानक सर्प के फण पर रख आपका चरण कमल। तो जब आपको कालिए के फण पर चरण कमल रखने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमारे अस्तनों पर क्यों नहीं रखते हैं? उसको कीजिए। और हमारा जो हृदय रोग है, प्रेम रोग है, आपसे मिलने की जो लालसा है, आपके विरह में जो हम मर रहे हैं, उस विरह रोग को आप दूर कीजिए। ये प्रार्थना है, यह अलौकिक प्रार्थना है। भगवान के चरण कमल को वक्षस्थल पर चाहती, कहाँ है काम विकार कोई व्यक्ति सोच सकता है, भगवान के चरणों को सुख देने के लिए। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, मतलब चरणों के वर्णन में दूसरा, चल सीजत ब्रजात चारयन पसुन नलिन सुंदराम नाथ ते पदम शील तृणांकुरै सीदति तिनः कलिलता मनः कांत गच्छति। हे प्रियतम, जब दिन के समय आप गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हैं, वन में जाते हैं, तो हम अपने घरों में रहती हैं, लेकिन जब हम यह चिंतन करती हैं कि आपके चरण कमलों में शील और तृण लगते होंगे, कुश कंटक या पत्थर लगते होंगे, तो यह सोच करके हमारा मन मूर्छित हो जाता है, विमोहित मूर्छित हो जाता है। जब दिन के समय ये दशा होती है तो हे नाथ, हे हमारे प्राणनाथ, ये रात्रि का समय है और आप उसी चरण कमल से चल रहे हैं, यह सोच करके हमारी क्या दशा हो रही है, आप विचार कीजिए। और इसीलिए दृश्यताम, आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, चरण कमलों में दुख हो रहा होगा। चलस इज्जत ब्रजात चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन सुंदरम, कमल सुंदरम, कमल के समान सुंदर सुकुमार चरण आपका शील और तृण अंकुर आदि से दुखी होता होगा, ये सोच करके हम मूर्छित हो जाते हैं। वास्तव में ये बात स्मरण करके गोपियों के दांत लग जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, हमारे प्रियतम के चरणों में कितना दुख होता होगा, वे नहीं चाहते थे कि वे गाय चराने के लिए जाएं। तो बारंबार इस श्लोक का संबंध है, जैसे अकुर जी कहते हैं कि जद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम, गोपियों के वक्षस्थल से इसका संबंध था, अंकित रहता था उनके कुछ कुंकुम से। तो गोपियाँ ऐसे चाहती ही थी कि हमारे प्रियतम आवे और उनके चरणों को हम सहलाएं, अपने छाती पर रखें और उसको शीतल करें, उसको सुखी करें, इसके लिए वक्षस्थल पर रखती थी। तीसरा श्लोक बोल रहे चरण कमल के विषय में, प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणी मंडनं ध्येयमापदी चरण पंकजं संतमं चते हस्तने स्वर्पयाधिहं। हे रमण, हे हमारे प्रियतम, आपके जो चरण हैं वो शरण में आने वाले की सारी कामना पूरी कर देते हैं। प्रणत काम दो, कोई व्यक्ति चरण के शरण में आता है और उसको कुछ कामना रहती है, तो उसकी सारी कामना की पूर्ति कर देता है चरण। भगवान की विशेषता है, चरण में आने वाले की इच्छा को भगवान पूरा कर देते हैं। प्रणत कामदम, चरण का विशेषण बताया। और पद्मजार चितम, यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आपका चरण कमल अर्चित, पद्मज के द्वारा अर्चित। पद्म का अर्थ कमल और ज का अर्थ है जन्म। ब्रह्मा जी का जन्म पद्म से हुआ है, इसलिए उनको पद्मज कहते। तो पद्मज अर्चितम, ब्रह्मा के द्वारा आपका चरण कमल अर्चित, और इस पृथ्वी का श्रृंगार धरणी मंडलम, पृथ्वी का भूषण है आपका चरण कमल। मंडलम का अर्थ होता है गहना, अलंकार। जब भगवान आते हैं इस पृथ्वी पर, और खास करके जब वृंदावन में चलते हैं नंगे पांव बिना जूता के, पदत्राण के, तो पृथ्वी की सबसे अधिक शोभा होती है। और इस कारण से पृथ्वी बहुत उत्पादन देती है। भगवान देखते हैं पृथ्वी पर चरण विन्यास करते हैं, पृथ्वी के लिए यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुख पृथ्वी के लिए यही। तो गोपियाँ कहते हैं धरणी मंडलम, और श्री गोपीजन देखी हैं कि भगवान के चरण कमल पृथ्वी पर पड़ते हैं तो कितनी पृथ्वी सुंदर लगती है, और उनको स्पृहा होती है और पृथ्वी से पूछती हैं किम ते कृतम क्षिति तपो बतके स्वांग्री स्पर्शोत्सवैर पुलकितांग रुहैर विभास अप्यंग संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो बराह बपस परिरंभणे न। कि हे पृथ्वी, हे सखी, तुमने कौन सा तप किया था? प्रियतम कहीं भी होंगे तो तुम पर ही चरण रखे होंगे। वो चाहती है कि वो चरण हमारे वक्षस्थल पर रहे, हमारे देह पर रहे, परंतु भगवान चाहे रूठ करके जैसे तैसे छोड़ करके चले गए। तो चरण चिन्ह देख रही हैं और ये अनुमान कर रहे हैं कहीं भी कृष्ण होंगे तो पृथ्वी पर होंगे। तो कहती हैं, हे क्षिति, तुमने कौन सा सुकृत किया है कि प्रियतम के चरण कमल का स्पर्श तुमको सदा सुलभ है और उस आनंद का प्रकटीकरण हो रहा है तुम्हारे पुलक के रूप में। तो वृक्ष लताएं आदि के रूप में पृथ्वी वास्तव में पुलकित, वे पूछती हैं भावों को छिपाने के लिए। ये जो तुम्हारे भीतर पुलक है, क्या वामन देव ने तुमको नापा था इसलिए है? इसलिए काहे को है, डायरेक्ट चरण पड़ रहा है और इसके कारण पुलक है। तो कहते हैं कि वामन देव तुमको नापे थे, तुम पर चले थे, तो उसके कारण है क्या? वामन देव भगवान बलि के, महाराज बलि के यज्ञ में गए थे तो पैदल ही गए थे। लिखा गया है कि पृथ्वी धन्य हो गई भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाकर, और नापा भी था। कहते उरुक्रम विक्रमाद्वा, उरुक्रम के जब भगवान त्रिविक्रम बने थे तो उनके विक्रम से पद न्यास से ये पुलक हो रहा है क्या? कि आहो बराह बपस परिरंभणे न, या बराह देव ने तुमको जो अपने आलिंगन में लिया था उसके कारण पुलक है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के स्पर्श से तुमको पुलक हो रहा है, ये अंत में निश्चय कर दी। तुमने कौन सा सुकृत किया था बताओ, हम भी वही करेंगे और सर्वदा प्रियतम के चरण को अपने शरीर पर धारण करेंगे। तो जमीन पर नहीं उतरने देंगे, देह पर धारण करेंगे। अरे देह की बात छोड़ दीजिए, गोपियाँ तो ये मनोरथ करते हैं कि अरे सखी, ब्रह्मा से भेंट होगी तो उनसे यही वर मांगे कि जहाँ हमारे प्रियतम पद रखें, चरण रखें, उसके पहले हम वहाँ अपनी आँख रखें, उस पर वे चरण रखें। इतना गोपियों को चरण से प्रेम था, सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। और अंतिम श्लोक में यही रो रो करके कहती हैं, जत्ते सुजात चरणामृ हम स्तनेशु भीता सनई है वे दधि मही कर्कशेषु तेना टमी मटसी तब व्यथते न किंचित कृपा धीर भ्रमत धीर भवदाय शाम। हे प्रियतम, जब आपके चरण कमल को हम अपने स्तन पर रखती हैं तो बहुत डरती हैं, क्योंकि हमारा वक्षस्थल कठोर है और आपका चरण कमल बहुत सुंदर कमल की तरह है, तो हम सोचते हैं कहीं उस पर चोट न लग जाए। कठोर कर्कश स्तनों पर डर डर करके रखती हैं, और उन्हीं चरण कमलों से आप घूम रहे हैं रात्रि में, तो क्या कृपा भी न व्यथत है? क्या कोश या अंकुर आदि से आपका चरण कमल दुखी नहीं हो रहा है, पत्थर से दुखी नहीं हो रहा है? हम, हमारी आयु जो है वो आप हैं, आप ही हमारे जीवन हैं। आप दुखी हो रहे हैं तो हम लोगों का कलेजा दुखी हो रहा है, हम जी नहीं सकती। यदि हमको जिलाना चाहते हैं तो आप आ जाइए दृश्यता, वो पहले श्लोक से अन्वय है। द्वैत दृश्य तन आप दिख जाइए। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों से गोपियों का बहुत घनिष्ठ संबंध है और अक्रूर जी आज इस अवसर पर याद कर रहे हैं। और गोचारणायानुचरैश्चरत बने, भगवान के चरण कमल कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, नख कैसा है, कौन कौन अर्चना करते हैं, यह चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में यही भक्ति है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि अक्रूर जी की जो दशा हुई यही देह धारण करने का फल है। जब वह श्लोक आएगा तो उस समय हम उसकी व्याख्या करेंगे आचार्यों की टीका के अनुसार। तो इस प्रकार अक्रूर जी भावना कर रहे हैं। तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी इस श्लोक की टीका में लास्ट में कहते हैं, जद ब्रह्मादिभिर अर्चितम इति ऐश्वर्यम आह। ब्रह्मा शिव आदि भगवान के चरण कमल की आराधना करते हैं, इसके द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया, ईश्वरताई का, कितने बड़े हैं, कितना कंट्रोलिंग पावर है, सभी इनके दास हैं। जब ब्रह्मा शिव इनके दास हैं तो और देवताओं के लिए तो कहना ही क्या है। इसमें ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। श्रिया च देव्या इति सौभाग्यातिशय। श्री जी भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं तो इसमें भगवान के चरण कमलों के सौभाग्य का वर्णन। सौभाग्य का यह अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति उस चरण कमल का आश्रय लेगा तो उसका भाग्य चमक जाएगा। कई बार हम लोग सुनते हैं फॉर्चून, फॉर्चुनेट या लक, लकी। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति भाग्य संवारना चाहता है सब तरह से तो उसे चाहिए कि वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले, जैसे लक्ष्मी जी ने लिया, भगवान कृष्ण का दास बने। तो श्रिया इति सौभाग्यातिशय, मुनि भी सत्सात्वतः इति परम पुरुषार्थत्व। मुनि लोग जो भोग मुक्ति आदि सब छोड़ देते हैं तो क्या वे बुद्धू हैं क्या? इस कूड़ा करकट को छोड़ करके भगवान के चरण कमल का वर्ण करते हैं, जानते हैं बस बस यही परम लाभ, यही परम पुरुषार्थ। इस संसार में टॉप कोटि के जो व्यक्ति होते हैं उनको मुनि कहते हैं, सबसे बड़े मेधावी विद्वान समझ लेते हैं कि वास्तव में सबसे बहुमूल्य, सबसे परमानंद में वस्तु क्या है, तो वो है श्री कृष्ण का चरण पद। इसीलिए वो लोग अर्चना करते हैं मुनि भी सत्वतई के द्वारा भगवान के चरण कमल के पुरुषार्थत्व का वर्णन, वही परम पुरुषार्थ। गोचारणाय कृपालुत्व, सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं गौओं के पीछे भगवान के चरण चलते हैं, इसमें भगवान के कृपा का वर्णन है, स्नेह का। इतने महान हैं, ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा भगवान के चरण की पूजा होती है, इसका अर्थ है ब्रह्मा शिव आदि देवता ये चरण कमल के अनुचर दास हैं और वह चरण कमल गौओं का अनुचर। कितनी महिमा है ब्रज की और ब्रजवासियों की। जिस चरण कमल के अनुचर ब्रह्मा शिवादि हैं वो चरण कमल गौओं का अनुचर है। गोचारणाय चरद बने, गौओं को चराने के लिए वन में विचरण करता है। तो गौएं तो वन में ही चरेंगी ना, और वन में काट कुछ पत्थर रहता ही है। गौओं को चराने के लिए वन वन में भगवान का चरण कमल घूमता रहा। और जिस चरण कमल के अर्चक पूजक ब्रह्मा शिवादि हैं, श्री जी हैं, वह चरण कमल गोपियों के स्तन पर लगे हुए कुमकुम का रसिक, इसके द्वारा सौभाग्य परावधि वर्णन किया गया है। सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियाँ, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस चरण कमल के अर्चक पूजक ब्रह्मा शिवादि हैं, वह चरण कमल रसिक है, लालायित है गोपियों के वक्षस्थल का कुमकुम पाने के लिए। तो इसके द्वारा उत्कृष्टता की परावधि कह दी गई। धन्य है सखा, धन्य है गोपियाँ जिनके साथ भगवान के चरणों का ऐसा दिव्य संबंध है। गोचारणाय इति अनुचर, अनुचरों को भी भगवान का चरण कमल सब समय नहीं सुलभ होता है, और रात में आते हैं तो अपने अपने घरों में सोते हैं। गोचारण के समय भगवान के चरण कमल चलते हैं उनके साथ। गोचारणाय, कितनी गौओं की महिमा है, भगवान आ करके यहाँ गाय चराते हैं। भागवत में सब प्रकार के संदेश दिए गए हैं, गौओं की विशेष रक्षा करनी चाहिए। गो सेवा भगवान आकर के किए और गोपियों की महिमा, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, वो भागवत के पन्नों से साफ व्यक्त होता है। भगवान के चरण कमलों की उद्भावना या वर्णन भगवत में कई श्लोकों में किया गया है। भेयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। और उसी श्लोक के बाद उस लीला की याद की गई है कि माया मृग के पीछे दौड़ा था चरण, त्यक्त्वा सुदुस्तिज सुरेपसितराज लक्ष्मीम धर्मिष्ट आर्ज वर्षा जदगा दरण्यम धर्मिष्ट आर्ज वर्षा जदगा दरण्यम माया मृगम दैतेमनो धावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। कितना बड़ा सौभाग्य है क्रूर जी का, इस तरह से मनोरथ करते हुए वे जा रहे हैं, भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। ये तो केवल एक झरोखा की तरह दिया गया है, खिड़की की तरह, क्या क्या सोचे होंगे वो तो क्रूर जी जानते हैं। और सवेरे से शाम हो गया यही चिंतन करते करते, तो अक्रूर जी को कम से कम 12 घंटा लगा या 10 से 11 घंटा ऐसे लगा, क्योंकि सूर्यास्त होने से पहले पहुंच गए, तो 10 घंटा चिंतन किए चरण कमल का चिंतन कर। चरण कमल का चिंतन करने के बाद भगवान के मुख पर अब मन मानेगा नहीं तो मनोरथांतरम करो थे। चरण कमल का चिंतन करके इतना भक्ति का उद्रेक हुआ कि अब अक्रूर जी फिर मुख का वर्णन कर रहे हैं, मुख का दर्शन करूँगा, पहले चरण का दर्शन करूँगा, इसके बाद मुख का दर्शन करूँगा, तो बाह का दर्शन करूँगा, कई प्रकार की बात कह रहे हैं। और इस पूरे भागवत सप्ताह में अक्रूर जी के मनोरथ की ही कथा चलती रहेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, जय श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनाशिकाम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृताम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगः आप्याद्य विष्णोर्मनुजात्वमीयुष भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भनम् न मह्यं न नाशात् फलमञ्जसादृशः द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनाशिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगः इत्थं सहजदास्येन आदौ पादाब्ज दर्शनं विभाव्य तत एव भक्ति उद्रेकेण लोभात् श्रीमुख दर्शने अपि मनोरथं करोति। श्री अक्रूर जी भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे दास्य भाव से, अतः स्वाभाविक ही सबसे पहले अपने भाव के अनुसार भगवान के पदाब्ज दर्शन की भावना किए, चरण श्री चरण कमल के दर्शन की भावना की। परंतु जब मन ही मन में भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे थे रथ पर बैठे बैठे, चरण नख का और किस प्रकार अनेक प्रकार के भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, ये सब याद कर रहे थे, तो उस समय उनके मन में और भक्ति का उद्रेक हुआ, भक्ति और बढ़ गई। उस भक्ति की बाढ़ में भगवान के श्रीमुख दर्शन की का मनोरथ करने लगे। भगवान के अंगों की विशेषता है कि जो भक्त जिस अंग को देखता है तो उसी को देखता रह जाता है, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। इतना मधुर है, इतना रस है उस अंग में, उसको छोड़ना नहीं चाहता। परंतु अक्रूर जी की इतनी भक्ति उमड़ी, इतना लोभ उमड़ा कि अब मुख को भी देखने का मनोरथ होने लगा। तब इस श्लोक में वे कहते हैं, अहम नूनम निश्चितम मुकुंदस्य मुखम द्रक्ष्यामि, मैं मुकुंद का मुख देखूंगा। कैसे इस बात का निश्चय कर रहे हैं कि मुकुंद का मुख देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रदक्षिणम वही प्रचरन्ति वही मृगा, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वही मृगा। वे देख रहे हैं बारंबार, जब भी मृग निकल रहे हैं पथ में तो अक्रूर जी को दाहिने कर रहे हैं, अक्रूर जी के दाहिने वो पड़ रहे हैं मृग सब। तो किसी यात्रा के समय कुछ विशेष प्रकार के दृश्य होते हैं तो उसका विशेष फल होता है। ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ यात्रा पर निकले और उस समय कोई ब्राह्मण हाथ में गीता या भागवत लिए हुए दिखाई दे सवेरे सवेरे, तो यात्रा निश्चित सफल होती है। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और इस संवाद को, इस खबर को लेकर के जनकपुर से कुछ दूत गए अयोध्या, तो महाराज दशरथ थे उस समय घर से निकले थे घूमने के लिए, तो वे देखते हैं कि हाथ में दो ब्राह्मण वेद की पोथी लिए आ रहे हैं, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण। वे समझ गए कि आज बहुत बड़ा कोई मंगल होने वाला है। तब तक जनकपुर से जनक महाराज के दूत आकर बताए कि श्री राम ने समस्त राजाओं के पौरुष को अभिभूत करके धनुष तोड़ दिया है और जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है, और आपसे यह निवेदन है कि आप बारात लेकर के चलिए। और इसके साथ साथ दूत ने यह भी कहा कि जनक महाराज की और भी तीन पुत्रियां हैं सीता के अतिरिक्त, अतः आपके और भी तीन पुत्रों का विवाह वहीं हो जाए तो क्या हर्ष है। ये संवाद आया, और भी नाना प्रकार के लक्षण दिए गए हैं महाराज दशरथ से, वो किस प्रकार शुभ शकुन हो रहे हैं। और विशेष करके जब हरिण दाहिने तरफ निकले तो यह प्रकृति के द्वारा एक सूचना है कि कार्य होगा, मनोरथ पूरा होगा। प्रकृति में कुछ ऐसे दृश्य होने लगते हैं, इंडिकेशन होता है, कुछ ना कुछ जैसे अंगों का फड़कना कुछ होने लगता है, फड़कने लगता है। तो दाहिने अंग बारंबार यदि फड़के पुरुषों के तो मंगल देते हैं, और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने पर भी मंगल देते हैं, शुभ करते हैं। हमने देखा कई बातें मिलती जुलती हैं आजकल के टेक्नोलॉजी में, ऐसी ऐसी कारें बनी हैं कि कार में अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं बैठा है तो कोई ना कोई सिग्नल होने लगता है, जैसे दरवाज़ा कोई नहीं बैठा है तो वो कुछ न कुछ चिकचाक फ्लासिंग या कुछ ऐसे करने लगता है। तो ये अंग स्फुरण हो रहा है कि ध्यान दीजिए, कोई दरवाज़ा खुला है या चाहे कुछ खराबी है, तब वो फिर से उसको ठीक कर ले। तो इस तरह भगवान ने कुछ ऐसा दृश्य बनाया है बाहर भी और भीतर अंग में भी, यात्रा के समय जो दृश्य होते हैं वे अपने अनुसार फल देते हैं। हम लोग प्रायः शुभ यात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, भले अशुभ कार्य के लिए जा रहे हों लेकिन फिर भी शुभ यात्रा और आपकी यात्रा सुफल हो, यही आशीर्वाद दिया जाता है। हैव ए गुड जर्नी, हैव ए सेफ जर्नी, हैव ए सेफ जर्नी, क्योंकि आजकल जर्नी में सेफ नहीं रहता है, इसलिए अब यही कहना चालू किया, हैव ए सेफ जर्नी, आपकी निर्विघ्न यात्रा हो जाए। तो यात्रा किस लिए व्यक्ति करता है? कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, कोई वस्तु पाने के लिए, कोई कार्य विशेष पूरा करने के लिए। लेकिन आप विचार कीजिए, अक्रूर जी जैसा शुभ मनोरथ किसका होगा? उनकी जैसी शुभ यात्रा रही, कहाँ जा रहे हैं? भगवान को देखने के लिए, सबसे अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। यदि यात्राओं में विचार किया जाए तो अक्रूर की ब्रज यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, और वो यात्रा सफल होगी, भगवान मिलेंगे, भगवान का श्रीमुख देखने को मिलेगा, इस बात की सूचना हरिण दे रहे थे, दाहिने तरफ निकल रहे थे। ऐसा कहा गया है कि यदि अच्छे अच्छे पशु जैसे मृग, घोड़ा, हाथी और भी अच्छे गाय वगैरह यदि दाहिने निकलें तो यात्रा सफल होती है, मंगल होता है, और ये कदाचित ज़्यादा बाएं करके जाने लगे तो समझना चाहिए कि यात्रा ठीक नहीं। और निकृष्ट पशु जैसे गधा आदि यदि दाहिने निकलने लगे तो भी खतरा होता है। महाराज युधिष्ठिर को ये सब दिखाई दे रहा है, जब भगवान चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, तो देख रहे थे विविध दृश्यों को और भीमसेन से बात किए, ये सब बातें में कहते हैं। तो अक्रूर जी मृगों के प्रदक्षिणम दाहिने तरफ स्थिति देख करके निश्चय करते हैं कि अहम नूनम मुकुंद से मुखम द्रक्ष्यामि, मैं मुकुंद का मुख निश्चित देखूंगा। ये सब सूचनाएं मिल रही, और एक बार नहीं, बारंबार प्रचरन्ति, और एक मृग नहीं, अनेक मृग बारंबार आ रहे थे, जा रहे थे। जो निकट मृग चर रहे थे वे रथ की आवाज़ से, रथ तो तेज नहीं चल रहा था लेकिन चरर मरद कुछ न कुछ कर रहा था, जैसे आवाज़ होती है स्वाभाविक, तो उस आवाज़ को सुन करके वे चकित चकित हो जाते थे, थोड़ा दूर हट जाते थे, और दूर होकर के, लेकिन जितने भी दूर होते थे दाहिने तरफ होते थे, बाएं तरफ एक भी नहीं, और दूर से जा करके ऐसे देखने लगते थे कौन है व्यक्ति कौन है। तो रथ कभी वन में देखे नहीं थे, वन में तो गाय भैंस चरते हैं चाहे और सब पशु रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की गाड़ी और आवाज़ करते हुए, इसीलिए पाठ भेद भी अदह शब्द का प्रयोग है। इदम शब्द का विरोधी है अदह, अदह का अर्थ होता है थोड़ी दूर की वस्तु, वह इदम माने यह, अदह माने वह, पाठ भेद भी है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अदह मृगा चरंती, वे मृग मेरे दाहिने चल रहे हैं। अक्रूर जी देखते हैं तो वे मृग से तात्पर्य जो है वही के बदले ये है, प्रचरंत अदह मृगा, ऐसे पाठ है। तो उसका ये अर्थ होगा कि वे मृग मेरे दाहिने तरफ चल रहे हैं, तो वे मृग का अर्थ है कि रथ की ध्वनि से वे थोड़ा चकित होकर, भयभीत होकर के दूर चले जा रहे हैं। अथवा पहले मृगों ने देखा होगा वन में रथ का आना, या कम से कम घोड़ा का आना देखा होगा, तो ये जान गए कि शिकार करने के लिए कोई आया है, या ऐसे। वैसे पशु भी पहचान जाते हैं कि कौन बधिक है कौन साधु महात्मा है, पहचान जाते हैं, तो ये जान गए कि ये कोई बधिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दूर हो रहे थे और देख रहे थे। जब कोई हरिण देखे किसी के तरफ ध्यान से, तो हरिण के आँखों में इतना शुभ सूचक चिन्ह होता है कि वह देखे तो उसको देखने से भी मंगल होता है। तो सारे मृग अक्रूर जी को देख रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, सब खाना छोड़ करके देख रहे थे, और जब तक अक्रूर जी अलक्षित नहीं हो जाते थे दृष्टिपथ से, तब तक देखते रहते थे। यह सब बहुत शुभ है, शकुन हो रहे हैं, तो मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मुकुंदस्य इति पूर्वकृत निरुक्त्या, इसके पहले वे मुकुंद शब्द की निरुक्ति किए हैं। मुख का अर्थ है मुख है, और कुंद का अर्थ है कुंद, मुखे कुंदानी कुंदवत श्वेत दंत पंक्तयः जस्य यजस्मिन, भगवान के दांत बिल्कुल स्वच्छ श्वेत कुंद की तरह है। कुंद एक पुष्प होता है जो बहुत श्वेत होता है, और उसकी छोटी 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 पंखुड़ियाँ होती हैं उजली उजली। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मुख में
बहुत ही सुंदर सघन दांत हैं, तो इसीलिए ब्रज में उनका नाम पड़ा मुकुंद, जिनके मुख में कुंद है, कुंदवत दंत पंक्ति, इसलिए उनको मुकुंद। या मुख का अर्थ है मुक्ति दुख है, और द का अर्थ है मुक्ति, और द का अर्थ देने वाला। तो श्री कृष्ण ने नंद बाबा को दो बार छुड़ाया था, एक बार वरुण के पास से और एक बार अजगर से। तो नंद बाबा उनको मुकुंद कहना चालू किए, क्योंकि मुक्ति दिए थे, अजगर से मुक्ति दिए थे और वरुण के दूतों से मुक्ति दिए थे, दो बार दवानल से मुक्त किए थे बच्चों को, गोपों को, तो वे लोग भी मुकुंद कहने लगे। गोपियों को शंखचूड़ से मुक्त किए थे, तो वे लोग भी मुकुंद कहते थे, और छोटे छोटे बच्चे अघासुर के पेट से मुक्त किए गए थे, तो वे लोग भी मुकुंद कहते थे। और दिन भर के विरह ताप को श्री कृष्ण रात्रि के समय हर लेते थे, गोपियों का विरह ताप, तो वे लोग भी उनको मुकुंद कह देते, दुख से मुक्ति दे दिए, विरह पीड़ा से मुक्ति दे दिए। तो यह मुकुंद नाम बहुत प्रसिद्ध है, परंतु सबसे ज़्यादा जो इसका अर्थ है प्रचलित ब्रज में, वो है कि इनके मुख में बहुत सुंदर दांत। चूँकि यहाँ पर अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं कि मैं मुकुंद के मुख को देखूँगा, तो कथम भूतम मुखम, पहले तो मुकुंद कह रहे हैं जिनके मुख में बहुत सुंदर दांत हैं, मैं उनको देखूँगा। और कैसा मुख देखेंगे आप? ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के श्री दंतों का चिंतन कर रहे हैं। भगवान जब मंद स्मित करते हंसते हैं तो छोटे छोटे दांत उनके खिलते हैं, दिखाई देते हैं, तो दांतों के दिखने से उनके मुख की और शोभा बढ़ती है, इसलिए मुकुंद शब्द द्वारा याद कर रहे हैं। सुकपोल नासिकम, कैसा मुख है? शोभनौ कपोलौ शोभना च नासिका जस्मिन तच्च तत्। जिस मुख में सुंदर कपोल हैं, कपोल कहते हैं गाल को, और नासिका नाक, भगवान के बहुत ही सुंदर कपोल हैं और बहुत सुंदर नासिका है। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं दोनों तरफ, गालों का और नासिका। सूरदास जी ने एक एक अंग पर हजारों हजारों पद गाया है भगवान के, कैसी नासिका है, कैसा कपोल है, कैसा अलक है, कैसा ललाट है, कैसी गर्दन है, कैसा कान है, कुंडल है, सब कुछ। इसी में जीवन बीता उन भक्तों का, भगवान का यश गाते हुए। तो सुकपोल नासिका का अर्थ है शोभनौ कपोलौ नासिका च जस्मिन तत्। स्मितावलोकारुण कंज लोचनम स्मितावलोक स्मितपूर्वकम स्मितपूर्वको अवलोक जस्मिन, और अरुण कंजवत लोचने जस्मिन तच्च मुखम द्रक्ष्याम। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं भगवान के मुस्कान का ध्यान कर रहे हैं। स्मित, स्मित का अर्थ होता है कि जब मुख थोड़ा सा विकसित हो, और जब कोई व्यक्ति हंसता है और आवाज़ नहीं निकलती है मुख से तो उसको स्मित कहते हैं, और जब आवाज़ निकलती है तब तो उसको हंसी का हास्य का। कुछ लोग तो बहुत ज़ोर से हंसते हैं, ठठा करके हंसते हैं। भगवान भी कभी कभी बहुत हंसते थे अपने सखाओं की गोष्ठी में, कुछ नर्म सखा होते हैं, खासकर मधुमंगल मनसुख, तो ये दिन भर बात बनाते ही रहते हैं, तो भगवान हंसते रहते थे बहुत ठठा कर, लेकिन कभी कभी वे मंद स्मित करते थे, मंद मुस्कान। मंद स्मित का अर्थ होता है कि दांत न दिखाई दें और चेहरे पर एक आनंद की प्रभा बिखरी हो, उसको स्मित कहते हैं। तो श्री कृष्ण मंद स्मित के साथ अवलोक करते हैं, देखते हैं, तो स्मित पूर्वक अवलोक जिसमें है, या स्मित जिसमें है, अवलोक जिसमें है, और अरुण कंज जैसे दो लोचन हैं, दो आँखें हैं, ऐसे मुख को देखूँगा। और गुडाल कावृतम, गुडा, गुडा का अर्थ होता है वक्र, घुरछियाया हुआ है गुडा, केस का, या अलग का अर्थ है केस। तो जिस मुख पर घुंघराले केस लटके हुए हैं, बहुत आवृतम, आवृतम का अर्थ है कि वह केस गिरा हुआ है चारों तरफ, और आवृतम से यह अर्थ नहीं ले लेना चाहिए कि आगे का भाग भी गिरा हुआ है, वो तो पागल चाहे भूत ऐसा रखते हैं केस, उनको ध्यान नहीं रहता है। आवृतम से तात्पर्य है कि लटकी हुई हैं और लटके हैं, आँखों के सामने नहीं है, तो ऐसे मुख को मैं देखूंगा, निश्चित ही देखूंगा, नूनम निश्चितम जतः मृगा में प्रदक्षिणम चरंती प्रचरंती, वह मृग मेरे दाहिने चल रहे हैं। और इसके बाद अधुना पुनरति लोभोद्रेक्रेण सर्वांग संदर्शने मनोरथम करोति, श्रीमुख का दर्शन करते करते भक्ति और बढ़े तो अब सर्वांग दर्शन का मनोरथ कर रहे हैं अगले श्लोक में। अप्याद्य विष्णुर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्य धामनो भवितोपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलमञ्जसादृशः। भुवः भारावताराय, पृथ्वी का भार उतारने के लिए निजेच्छया अपनी इच्छा से अथवा अपने जनों की ब्रह्मा आदि की इच्छा से जो मनुजत्वम ईयुषः मनुजत्व को प्राप्त हुए हैं, हम लोगों के इस वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लिए हैं, यह कहने का अपना नित्य नर बपु जो प्रकट किए हैं, ऐसे लावण्य धामन सौंदर्य के आश्रय विष्णु का अद्य उपलम्भनम आज दर्शन होगा अथवा स्पर्श होगा, तो अपि यदि एवं स्यात् तर्हि, अपि का अर्थ यहाँ ये है कि यदि ऐसा होगा तो क्या मुझे मेरे आँख का फल नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है अर्थात होगा। फलम न स्यात् इति न अपितु स्यात् देव, यदि मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो क्या मेरे आँखों का फल आज नहीं मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अवश्य फल मिलेगा। यह इस तरह से भावना करते जा रहे हैं। अब हम लोग एक एक अंगों पर विचार करें, मनोरथ हो रहा है तो खूब अच्छा से होना चाहिए। हम इन श्लोकों को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं दोनों में आज रहेंगे, मतलब सवेरे के सीटिंग में। तो हमारे आचार्यों ने भागवत के इन श्लोकों का बहुत बहुत मनन किया है, जैसे श्रील चक्रवर्ती पाद, श्रील सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि, वे इसी भूमि में रहते थे, इसी ब्रजभूमि में यही उन्होंने अपना जीवन यापन किया और यहीं ये सब लीलाओं का चिंतन करते थे और यहीं पर टीका लिखे, तो उनकी कितनी बड़ी स्थिति होगी, वे अक्रूर जी के मन में प्रवेश कर चुके होंगे और भगवान के उस छवि का कितना अच्छा से चिंतन करते होंगे कि अपने को उठाए थे, वास्तव में अपने को प्राकृत धरातल से ऊपर उठाना चाहिए तब भगवान समझ में आएंगे। और भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह एक टाइम पूरा करने के लिए कर दिए, जैसा हमने देखा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है खास करके स्त्रियां श्रोता बनती हैं, क्योंकि पुरुषों को तो फुर्सत होती नहीं है, स्त्रियां सुनती रहती हैं जोड़ कर, और पंडित जी संस्कृत में कथा कहते हैं और वो भी बहुत फास्ट, और ऐसी स्त्रियों से कथा कहते हैं जो हिंदी भी नहीं समझ सकती, बहुत फास्ट कहते हैं क्योंकि उनको पूर्णिमा के दिन कई जगह कथा कहनी होती है। हमने देखा है अपने गांव में स्त्रियां, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सुनती हैं कथा और पूरी कथा सोती रहती हैं, एक सेकेंड भी नहीं जगती है। जगती हैं कब, जब पंडित जी अध्याय पूर्ति पर शंख वादन करते हैं, इति श्री रेवा खंडे कह करके बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, तब जगती हैं। अच्छा, और यह भी हमने देखा है कि जमीन पर लकीर खींचती हैं, एक अध्याय हो गया, पांच अध्याय की कथा है एक अध्याय हो गया, फिर पंडित जी का चालू होता है और माता जी लोगों की नींद भी चालू होती है, फिर दूसरे अध्याय पर शंख वादन के बाद वो नींद खुलती, बस और कुछ नहीं जानती है। पांचवा अध्याय पूरा हो जाता है तो नींद सदा के लिए खत्म, कथा खत्म और नींद खत्म, क्योंकि नींद की उपयोगिता तो कथा में थी ना कथा खत्म होने के बाद नींद नहीं तो श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव में आस्वादन करने के लिए है, जैसा भक्तों ने लिखा भी है यहाँ, आस्वादन लिखा, रसास्वादन लिखा, ये रस का आस्वादन करना है। तो हमारे आचार्य लोग अनादिकाल से इसको चबाए हैं, चर्बण किए हैं रस, उसी रस में से उनकी उक्तियों के आधार पर कुछ रस है, हम लोग भी आस्वादन करने के लिए बैठे, कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, रसास्वादन के लिए बैठे हैं। तो क्या रस है भागवत में, इसका स्वादन तो और इसकी जानकारी तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या श्री सनातन गोस्वामी जैसे आचार्यों के श्रीमुख से ही संभव है, वे इन लीलाओं को समझते थे। तो कम से कम हम लोगों को इतना तो तैयार होना चाहिए कि हम इन उक्तियों को समझने का प्रयास करें। पहले तो टाइम चाहिए, समय चाहिए, और समय के बाद सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद भी सारी बातें समझ में नहीं आ जाएंगी, लेकिन ऐसा धीरे धीरे करेंगे, धीरे 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 तब उन बातों को पकड़ सकते हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया सेवन करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों का आस्वादन किया है अपने कई परिकरों के साथ, और मुख्य रूप से तीन के साथ भगवान ने इन लीलाओं का बहुत आस्वादन किया है। एक तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी के साथ, ये चैतन्य चरितामृत में दिया गया, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का आस्वादन वे कर रहे थे वाराणसी में, और श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह यह भी कहा है, पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ चला गया, क्या कहना चाहता हूँ और क्या कहने लगता हूँ। वास्तव में हे सनातन गोस्वामी, आप पर भगवान कृष्ण की बहुत कृपा है, वो मेरे मुख से आपको अपना सौंदर्यामृत पिलाना चाहते, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो मेरे मति में भ्रम डाल करके अपने सौंदर्य की कथा कहवा रहे, मैं तो दूसरी बात कहने चला था, इस तरह से कहते। और वे कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं, तो साक्षात कृष्ण हैं, परंतु भक्त भाव में बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन गोविंद लीलामृत में बहुत विस्तार से किया गया है, और श्रीमती राधा रानी के मुख से वर्णित हुआ है। उसमें से एक दो श्लोक हम लोग यहाँ पर आस्वादन करें, इस श्लोक से मिलता जुलता है। नवाम्बुद लसद्युतिर्नवतड़िन मनोज्ञाम्बर सुचित्र मुरली स्फुरत शरद मंद चंद्रानन मयूरदल भूषित सुभगतार हार प्रभ समय मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहां। इसकी व्याख्या करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा रानी बोली हैं, इसलिए राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिकण इंदिवर निंदी सुकोमल। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है इसका वर्णन करते हैं, राधा रानी ने किया। नव घन स्निग्ध वर्ण, श्री कृष्ण नवीन स्निग्ध मेघ की तरह सांवले, और दलितांजन चिकण, कितना चिकन उनका देह है, चिकना कितना देह है, तो इसका वर्णन करते हैं दलितांजन, पाउडर बनाया हुआ अंजन जैसे चिकना होता है बिल्कुल, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का देह चिकना, चिकन संस्कृत शब्द है चिकन, और लोक भाषा में भी सब जगह यही कहते हैं चिकन, वो जो स्लीप करे बहुत स्वच्छ, और क्या कहेंगे, चिकन के लिए कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी पॉलिश्ड पॉलिश्ड किए, लेकिन वो पॉलिश्ड किया हुआ नहीं है, परंतु समझने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं दलित अंजन, पॉलिश्ड अंजन, दलित का अर्थ पिसा हुआ अंजन, ऐसे कोमल है। इंदिवर निंदी सुकोमल, और कैसा है, इंदिवर कहते हैं नील कमल, नील कमल को भी तिरस्कृत करने वाली कोमलता है उसमें, सुकोमल, इंदिवर निंदी सुकोमल, इतना सुकुमार देह है भगवान का, इतना सुकुमार श्री विग्रह है कि उससे नील कमल की भी निंदित हो जाता है, अर्थात नील कमल से उपमा नहीं दे सकता। जिनी उपमान गण हरे सबार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। जिनी उपमान गण, जितनी भी उपमाएं हो सकती हैं संसार में, जैसे नील कमल या चंद्रमा या कोयल, कंठ की बोली के लिए उपमा आदि, ये सब उपमाओं को जीत लिया श्री कृष्ण का शरीर, किसी भी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती है। श्री सूरदास जी ने तो अपने पद में गाया है कि इसीलिए जितने भी उपमान कवियों के थे, किसी के सौंदर्य की उपमा देते थे किसी किसी वस्तु से, तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए तो ये जो उपमान है सब इधर उधर छिप गए, सब इधर उधर छिप गए। तो जैसे किसी व्यक्ति के सुंदरता के मुख के सुंदरता की उपमा दी जाती थी चंद्रमा से, वैसे स्त्रियों के मुख की उपमा दी जाती है चंद्रमुखी या चंद्र चंद्रानना इत्यादि। तो जब भगवान हुए तब चंद्रमा को हुक लग गई, सूरदास जी कहते हैं कि तब सोचा कि अब तो कृष्ण के मुख के आगे मैं कुछ हूँ ही नहीं, अब तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। इसलिए चंद्रमा बहुत दूर आकाश में भाग गया और भाग करके अब बीच बीच में मुख छिपा छिपा करके थोड़ा थोड़ा चादर से बाहर करता है मुख, तो कटता है। और किसी किसी दिन तो इतना उसके उसको बुरा लगता है कि पूरा पूरा काला काजल पोत करके उदित होता है, कभी कभी कलंक लग जाता है, धब्बा लगता है, ग्रहण लगता है उस पर कहते हैं। और इसी शोक में वो कभी घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। कोयल भाग करके वन में चला गया क्योंकि उसके स्वर से पहले किसी के सुंदर स्वर की उपमा दी जाती थी, लेकिन कृष्ण इतना सुंदर बोलते हैं कि कोयल ले जा करके वन में चले गए। और कमल मुख नीचे कर लिया ऐसे पानी में, कमल प्राय ऐसे होता है क्योंकि अब तो हमसे कोई उपमा देगा नहीं और कृष्ण के मुख के आगे हम कुछ हैं नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिनी उपमान गण, जिनी माने जीत करके, हरे सबार नेत्र मन, सबके नेत्र और मन को हर लेता है कृष्ण कांति परम प्रबल, कृष्ण का सौंदर्य बहुत प्रबल है, कह सखी की करी उपाय। ऐसे ऊपर वाला श्लोक है गोविंद लीलामृत में श्री राधा रानी बोली हैं श्री विशाखा जी से, और इस लीला में भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं जो राधा रानी के भाव में हैं और विशाखा सखी के ही अवतार हैं वे राय रामानंद जी, तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। सीधा राधा रानी के भाव में बोलते हैं कह सखी की करी उपाय, हे सखी बताओ हम क्या करें, कृष्णाद्भुत बला हक मोर नेत्र चातक ना देखे पिया से मरी जाए। कृष्ण एक बलाहक हैं, एक बादल हैं, मेघ हैं, जैसे इस श्लोक में कहा गया है गोविंद लीलामृत के श्लोक में। कृष्ण अद्भुत बलाहक, बलाहक मन मेघ, कृष्ण एक अद्भुत मेघ हैं और मोर नेत्र चातक, हमारे नेत्र चातक हैं, ना देखी प्यासे मरी जाए, नहीं देखने पर प्यासे मरी जाए, देखना ही पानी पीना है, ना देखी प्यासे मरी जाए। चाहे बंगला हो, चाहे ब्रजभाषा हो, हिंदी हो, वास्तव में भारत में जन्म लेने वाले लोग भाग्यशाली हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। अब देखिए ना देखी प्यासे मरी जाए, प्यासे शब्द है, ये सर्वत्र व्यवहार होता है, वो तो प्यासे मर जाएगा, प्यासन मर जाएगा, प्यासे मरी जाए, प्यास के कारण इतना शब्द कहने की जरूरत नहीं है, प्यासे मरी जाए। तो कृष्ण को न देख करके हमारे नेत्र चातक प्यास से मर रहे हैं, मर रहे हैं। तो कृष्ण के अंग की उपमा जब बादल से दी गई तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, यही कही राधा रानी कहती हैं, सौदा मिनी पीताम्बर अस्थिर न है निरंतर, और जो श्री कृष्ण के शरीर पर पीताम्बर है वह सौदामिनी है, बिजली स्थिर नहीं रहता है, जैसे बिजली स्थिर नहीं रहती है वैसे ही श्री कृष्ण का पीताम्बर एक समान नहीं रहता, वह हवा से लहराता रहता है। यदि सबसे ज़्यादा शौकीन व्यक्ति किसी को कहा जाए और फैशन वाला तो कृष्ण है, अपने पीताम्बर को वे ऐसे ऐसे फहराते हैं कि उसी पर सारा संसार मोहित हो सकता है, एक समान नहीं रखते हैं। मतलब पीताम्बर धारण करने के उनके कई तरीके हैं, कभी कभी तो पीताम्बर को ऐसे लटका लेते हैं, उनको जैसे ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि उनको ध्यान नहीं है पीताम्बर गिरा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है, कई प्रकार से पीताम्बर धारण करते हैं और पीताम्बर फहराता रहता है, उसी को कह रहे हैं कि अस्थिर नहीं निरंतर, निरंतर वो अस्थिर नहीं रहता है। इंद्र धनु सिखी पाखा ऊपर दिया छे देखा, और उस बादल के ऊपर इंद्रधनुष क्या है, सिखी पाखा मयूर पंख, यही इंद्रधनुष है। आर धनु वैजयंती माल, और दूसरा धनुष है वैजयंती माला। कई बार इंद्रधनुष कई इंद्रधनुष उग जाते हैं एक समय में, आपने देखा होगा। तो श्री कृष्ण रूपी मेघ पर दो धनुष इंद्रधनुष उगे हुए, तो सिखी पाखा और दूसरा वैजयंती माल। मुरली र कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, मधुर की जो कल जो मुरली की कल ध्वनि है, मुरली की जो आवाज है वही है उस बादल का मधुर गर्जन। वृंदावन नाचे मयूर क्षय, यहाँ तक कि मुरली को सुन करके बादल की आवाज सुन समझ करके वृंदावन में मयूर समूह नाचने लगते। अकलंक पूर्ण कल लवण जस्ना झलमल चित्र चंद्र तहते उदय, और अकलंक पूर्ण चंद्र उदित होता है उस बादल में। तो अकलंक पूर्ण चंद्र से तत्पर्य यह राधा रानी बता रही हैं कि कृष्ण का जो सौंदर्य है वही चंद्रमा है। चित्र चंद्र तहते उदय, उसी श्री कृष्ण के स्वरूप बादल में चंद्रमा उदित होता है। चित्र चंद्र अद्भुत चंद्रमा, लीला मृत बरी सणे सिंचे चौदह भुवने हेना मेघ जबे देखा दिल। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वह बादल कृष्ण रूपी बादल लीलामृत की वर्षा करता है, जैसे ये सामान्य बादल जो है जल की वर्षा करते हैं, तो कृष्ण मेघ है श्याम मेघ है लीलामृत की वर्षा करता है और चौदहों भुवनों को सींच देता है। चौदहों भुवनों में भगवान की लीला फैलती है। हेनो मेघ जबे देखा दिल, ये दिखाई दिया थोड़े देर के लिए हमको वह मेघ बादल। जैसे मान लीजिए कोई चातक कहे कि थोड़े देर के लिए बादल दिखाई दिया, लेकिन दुर्दई व झंझा पवने मेघे नीला अन्य स्थाने मरे चातक पीते ना पाई। लेकिन दुर्दैव के झंझावात ने उस मेघ को अलग कर दिया, दूर कर दिया। चाहे ब्रज में रहते समय श्री कृष्ण अपने घर चले गए या इधर उधर चले गए अथवा मथुरा चले गए, तो इसको राधा रानी कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव झंझा पवन है। झंझावात, झंझावात बहुत प्रसिद्ध शब्द है, जो बहुत जोर की हवा चलती है तो बादल सब हट जाते हैं आकाश। तो हमारा कुछ दुर्दैव था, ये दुर्दैव ही झंझा पवन की तरह है जिससे कृष्ण मेघ अन्य स्थान पर चला गया और मरे चातक पीते ना पाई। हरि नेत्र चातक रस पी नहीं पाए अब मर रहे हैं। पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय, पढ़ पढ़ राम राय कहे प्रभु गदगद आह्वाने। रामानंद पढ़े श्लोक सुनी प्रभुर हर शोक अपने प्रभु करे न व्याख्यान। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव में फिर कहते पुनः कहे हाय 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 रामानंद राय पढ़िए पढ़िए मुझे जिलाइए जिलाइए, भागवत का श्लोक सुनना चाहते हैं। पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय कहे प्रभु गदगद आख्यान। गदगद वाणी से बोल रहे हैं रामानंद पढ़े श्लोक, तो रामानंद राय श्लोक पढ़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु उसकी व्याख्या करना चालू करते अपने प्रभु करे न व्याख्यान। विक्षाल कावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयम च भुज दंड जुगम विलोक्य वक्ष श्रियक रमणम च भवाम दास्य। इसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु की है, हम तो पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। कृष्ण जिनी पद्म चांद पाती आछे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित चार ब्रज नारी आसी आसी खांदे पड़ी हय दासी छाड़ी लाजपति घर द्वार। कृष्ण चंद्रमा को और कमल को जीत लिए हैं और अपने मुख का जाल पसारे हैं मुख के सौंदर्य का, और उसमें जो अधर का अधरामृत है या मुस्कान है वही चारा है। और संसार की जितनी भी नारियां खास करके ब्रज की स्त्रियां वे पक्षी की तरह हैं, आया करके फंदा में फंस करके और कृष्ण की दासी बन जाती तो मुस्कान से। इस श्लोक में मुस्कान का वर्णन किया गया स्मितावलोक। तो ब्रज नारी आसी आसी फांदे पाती हय दासी छाड़ी लाजपति घर द्वार। सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, इसकी चर्चा में एक दिन किया था। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हे सखी, राधा रानी के भाव में बात हमेशा समझना चाहिए। हे सखी कृष्ण मुख द्विज राज राज, हे सखी कृष्ण का मुख है चंद्रमाओं का राजा है, बहुत चंद्रमा इसके कृष्ण के अंग में है, 24.5 चंद्रमा है ये गिनाए हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान के अंगों में 24.5 चंद्रमा। सखी है कृष्ण मुख द्विज राज राज, द्विज राज का अर्थ है चंद्रमा और राज का अर्थ है राजा, बहुत चंद्रमा है अर्थात 23.5 23 चंद्रमाओं का राजा है भगवान का मुख, कृष्ण का मुख, वो भी स्वयं एक चंद्रमा है। जैसे मनुष्यों का राजा मनुष्य बनता है, ऐसे चंद्रमाओं का राजा चंद्रमा बनता है। कृष्ण बपु सिंहासन है, बसी राज्य शासन है, करे संग चंद्र र समाज। और यह राजा कृष्ण का जो मुख राज है, मुख रूपी चंद्रमा राजा, वह कृष्ण बपु सिंहासन है, कृष्ण के शरीर रूपी सिंहासन पर बैठता है। मुख तो शरीर पर ही रहता है, तो कृष्ण बपु सिंहासन, कृष्ण का जो बपु है श्री विग्रह वह सिंहासन है, बसी राज्य शासन है, करे संगे चंद्र र समाज। तो इस तरह से राज्य शासन करता है। कहने का आशय है कि भगवान का तो अंग ऐसे सब सुंदर है, लेकिन मुख जो है वो तो मधुरम 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 मधुरम, यह कहने का भाव। तो इसलिए वो चंद्रमाओं का राजा है और अन्य चंद्रमाओं को साथ में लिया है। कौन कौन चंद्रमा है? दुई गंड सूची कण जिनी मणि दर्पण,